एक हैं, बैठिए वहीं से। कोई लालसा वाला है ना? हाँ, लालसा वाली है उसमें, वो भी करेगा इसके बाद।
जितना समय लगता है मथुरा जाने में इतना आधा आधा मथुरा पहुंच जाती है।
श्री रूप गोस्वामी पाद
अपने भक्तिसार सिंधु में दिखाया कि प्रार्थना तीन प्रकार के हैं, एक संप्रार्थनात्मिका, एक दैनवधिका, एक लालसामयी। कहे तो श्री कृष्ण चरण में प्रार्थना करना पड़ेगा कैसे भी पीपा मिले, भजन करते करते साधव जब थोड़ा उच्च स्तर पर पहुंचेंगे साधव समझेंगे और अपने खुद अनुभव करेंगे मैं कितना दीनहीन हूँ, ये दिखावट ने खुद अनुभव करेंगे साधक अनुभव करेगा साधक। फिर और थोड़ा उच्च स्थिति में आने पर उनको ये अंदर अंदर ये भावना पैदा होगी अपने आप गुरु की पास श्री गुरु की पास है, अहो हमारे गुरुवर्ग कैसे सेवा कर रहे हैं, ये जो राधिकाई सखियां कितनी सुंदर सेवा कर रही हैं, मेरा ऐसे दिन कब होगा मैं भी ऐसे जुगल किशोर की सेवा कर सकूं। इस प्रकार जब भावना आएगी उनको लालसामयी प्रार्थना या लालसामयी या सिद्धि लालसा लालसामयी प्रार्थना कहा गया है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जिनको सप्तम गोस्वामी कहा गया वो श्रीमन महाप्रभु के लीला में भी परिकर हैं और जुगल किशोर के लीला में श्री कमल मंजरी हैं। वो भक्ति विनोद ठाकुर साधकोचित भाव से ये हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। पाल्लदासी करी ललिता सुंदरी आमारे लैया कबे श्री राधिका पदे काले मिलाइबे आज्ञा सेवा समर्पिबे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर भजन करते करते जब साधक के तीन दशाएं होती है, एक बाह्य दशा, एक अर्धबाह्य दशा, एक अंतरदशा। जब साधारण रूप में हम हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं इसको कहा गया बाह्य दशा। फिर भजन करते करते कुछ भाव हृदय में स्फुरित हो रहा है, अभी ये शरीर का भान भी थोड़ा सा है और पूरा पूरी तरह से वो पूरा भाव भी हृदय में प्रकट नहीं हुआ, उनको अर्धबाह्य दशा कहा गया। और अंतरदशा जब साधक भजन करते करते अपने सिद्ध शरीर में प्रविष्ट होकर के जुगल किशोर की सेवा करते हैं तो उनको अंतरदशा कहा गया। दूसरी इस तरह से समझ सकते हैं, अंतरदशा से जब धीरे धीरे बाह्य दशा में साधक आ रहे हैं, अभी उनका पूरा बाह्य दशा आया भी नहीं, उस बीच के अवस्था को अर्ध बाह्य दशा कहा गया। जैसे श्रीमद् महाप्रभु लीला में हम देखते हैं ऐसे उनका अंतरदशा, अर्ध बाह्य दशा और बाह्य दशा। तो भक्तिमान ठाकुर अंतरदशा में पहुंच करके ये कह रहे हैं, अहो ऐसे मेरा दिन कब होगा, उस समय खुद भूल गए कि मैं भक्ति विनोद ठाकुर हूँ, ये धर्म उनका भाव नहीं उस समय। अंतरदशा में प्रविष्ट होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, पाल्लादासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कभी, अहो ऐसा मेरा दिन कब होगा जब ललिता देवी जो राधा कृष्ण के लीला में उनका एक छत्र अधिपत्य है, वो राधा जी को भी शासन कर सकती है कृष्ण को भी, क्यों उनका सेवा सौष्ठव इतना सुंदर है कि उनके शासन को कृष्ण भी स्वीकार करते हैं राधा जी भी स्वीकार करती हैं। तो पाल्लादासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कभी, अहो मेरा ऐसे दिन कब होगा जब ललिता देवी मुझे कृपा करके मुझे राधा जी का पाल्लादासी बना देगी। केवल यही नहीं, पाल्लादासी बना करके मुझे कब ले जाएंगी साथ में, कहाँ ले जाएगी। तब कह रहे हैं, श्री राधिका पदे काले मिलाइबे आंका सेवा समर्पिबे, राधिका के पाद पद्म में ऐसे समय कब आएगा कि राधिका के पाद पद्म में मुझको समर्पण कर देंगी और क्या करेंगी, आगदा सेवा समर्पिबे। साधक भजन करते करते जब स्वरूप सिद्धि होगी तब गुरु कृपा से उनको ये उनको एकादश भाव उनको प्राप्त होगा, उसमें एक आगदा सेवा है। जैसे भक्ति ठाकुर कह रहे हैं, बरने तड़ित बास तारा बोली कमल मंजरी नाम साढ़े बारह वत्सर वयस सतत सानंद सुखद धाम कर्पूर सेवा ललितार गण राधा जितेश्वरी हन ममश्वरी नाथ श्रीनंद नंदन हमारे प्राण धन। इसमें कह रहे हैं कर्पूर सेवा ये उनकी आज्ञा सेवा है। ऐसे ही प्रत्येक साधक को जब ऐसे उच्च स्थिति में पहुंचेंगे तब ये उनका ललिता देवी कृपा करके शिव गुरु के माध्यम से ये आज्ञा सेवा समर्पण करेंगी। लेकिन ऐसे दिन कब होगा जब मुझे ललिता देवी राधा के पाद पद्म में समर्पण करेंगी और आज्ञा सेवा प्रदान करेगी। श्री रूप मंजरी संगे जाब कवे रस सेवा शिक्षा तरे तदनुगा हये राधा कुंड तटे रही हर्षितांतरे। जो राधा कृष्ण जुगल की सेवा करते हैं उनमें कौन है प्रधान है, रूप मंजरी। राधा के पांच प्रकार, राधा जी के पांच प्रकार सखियां हैं, सखी नित्य सखी प्राण सखी प्रिय सखी प्रिय नर्म सखी। उनमें से जो प्रिय सखी प्राण सखी और नित्य सखी इन दोनों को मंजरी कहा गया। राधा कृष्ण जब जुगल विलास करते हैं ये ललिता आदि परम कृष्ण सखी और सखियां जाने में संकोच करती हैं, रूप मंजरी रति मंजरी ये सब कोई संकोच नहीं है। किसी भी अवस्था में जुगल किशोर की सेवा के लिए लोग पहुंच सकती हैं, उन्हें कोई संकोच भाव नहीं है। इसलिए बोलाया कहा गया रुद्रवस्था में कहा कि लो असंकोचित भूमिका, मंजरी का भाव क्या है, संकोच विहीन भूमिका है। किसी भी अवस्था में जाकर के जुगल किशोर की सेवा कर सकती हैं और करती भी हैं। उनमें प्रधाना कौन है, श्री रूप मंजरी। अब भक्ति ठाकुर कह रहे हो ऐसे मेरा दिन कब होगा, कौन सा दिन, श्री रूप मंजरी संगे संगे जावो कवे रस सेवा शिक्षा तरे, ऐसे मेरा दिन कब होगा कि रूप मंजरी जो कृपा करके साथ में ले जाएंगी, कहाँ ले जाएंगी और क्या करेंगी, रस सेवा शिक्षा तरे, राधा कृष्ण की सेवा रस पूर्वक होती है, इसलिए ऐसे मेरा दिन कब होगा, रूप गोस्वामी के साथ जाकर के कब होगा, रूप करूंगी और क्या, तदनुगा हुए राधा कुंड तटे रही व हर्षितांतरे। तदनुगा अर्थात रूपानुगा होकर के रूप मंजरी के अनुगत्य में रह करके कहाँ रहूंगी राधा कुंड तटे, राधा कुंड के तट पर। क्यों, राधा कुंड के चारों ओर अष्ट सखियों के कुंज हैं, अष्ट सखी कुंज के बीच बीच में एक एक मंजरी का कुंज है। जितने हमारे गुरुवर्ग हैं सब राधा कुंड के तट में निवास करना पसंद करते हैं, क्यों अपने शरीर में वही निवास करते हैं, इसलिए अपने लालसा में साधना में भी प्रार्थना में भी यही दिखाया कि कहाँ रूप ठाकुर अपने भाव में आविष्ट कर रहे हैं, राधा कुंड तट में रहूंगी, कैसे रूपानुभव होकर के रूपमंजरी के अनुगत्य में रह करके रहूंगी, और कैसे दुखी होकर नहीं रही व हर्षितांतरे सौ समय आनंदित होकर के उधर रहूंगी। और कुछ प्रार्थना बोला, हाँ और भी है, क्या है, श्री विशाखा पदे संगीत सीखी व कृष्ण लीला रस समय, ऐसे मेरा दिन कब होगा कि श्री विशाखा देवी के पद पद्म में रहकर मैं संगीत शिक्षा करूंगी। राधिका की जो प्रधान अष्ट सखियां हैं सबका एक एक गण है, ललिता की गण, ललिता का गण, विशाखा का गण, उसमें कहा गया विशाखांग शिक्षा ली गुरुते, विशाखा देवी सबको शिक्षा प्रदान करती हैं। देखो क्यों ठाकुर अपने भाव में आविष्ट होकर के कह रहे हैं, और ऐसे मेरा दिन कब होगा मैं विशाखा देवी के पाद पद्म में रह करके संगीत शिक्षा करूंगी। कौन सा संगीत, जुगल किशोर को रिझाने के लिए, वो कौन सा है, कृष्ण लीला रसमय, जिस कृष्ण लीला में रस पूरा भरा हुआ है, ऐसे मैं एक संगीत शिक्षा करूंगी। और श्रीरति मंजरी श्री रस मंजरी होई वे सवे सदय परम आनंदे सकले मिलिया राधिका चरण, श्रीरूपा श्रीरति मंजरी श्री रस मंजरी होई वे सवे सदय, और केवल रति मंजरी के रूप मंजरी कृपा होने पर ही नहीं होगा, उनकी साध्य रहने वाली है, कौन है रति मंजरी रस मंजरी, रहो उन लोगों की कब कृपा होगी, वो लोग मुझ पर सदय होंगे, सदय होंगी होकर के वो लोग भी मुझे शिक्षा प्रदान करेंगी। जब इस सबके कृपा मिलेगी तब मैं क्या करूंगी, कमल मंजरी के भाव से कह रहे हैं, परम आनंदे सकले मिलिया राधिका चरणे रव, यही पराकाष्ठा सिद्धि कबे हबे पाव राधा पदा सब। अब जब ये सब मेरा वांछा पूर्ण होगी तब हम क्या करेंगे, सबके मिल साथ मिलजुल करके रहेंगी, करके श्रीमती राधा ठाकुरानी के चरण सेवा करूंगी, और यही पराकाष्ठा सर्वोच्च भावना है। इस प्रकार पराकाष्ठा का सिद्धि कब होगी, जब सबके साथ रह करके राधा जी के पादा सब मिलेगा, पादा सब अर्थात चरणाम पाद पद पद्म, आसव अर्थात अमृत, ऐसे राधा जी का चरण के सेवा ही अमृत है। इस प्रकार अमृत मुझे कब प्राप्त होगा, राधा कुंड तट में रह करके विशाखा देवी के पाद पद्म में रहकर संगीत सीखूंगी, और रूप मंजरी के अनुगत रह करके जुगल की सेवा करूंगी, और रोति मंजरी रस मंजरी मुझे सदैव होकर सेवा में नियुक्त करेंगी। और ये कैसे होगा, जब ललिता जी कृपा करके मुझे पाल्लदासी बनाकर राधा जी के पाद पद्म समर्पण करेंगी, तब ये संभव है। इसलिए ये सब जब धीरे धीरे एक के बाद एक कैसे होगा, श्री गुरु पाद पद्म की वह कृपा से ही संभव है। जब गुरु जी कृपा करेंगे धीरे धीरे हमारा ये जो दैहिक भाव है, देहादैहिक संबंध है, धीरे धीरे दूर होगा, और हम भी भजन में प्रविष्ट होकर ये भावना गुरु जी की कृपा से प्रकट होगा, और गुरु जी जब योग्य देखेंगे तब ये समस्त एकादश भाव ये सब प्रदान करेंगे। ये भक्तिम ठाकुर हम लोगों को शिक्षा देने के लिए साधकोचित कैसे प्रार्थना होनी चाहिए ये दिखाया इस ग्रंथ में, इस कीर्तन में।
ठीक है, बैठ 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 आराम से। Thank you.
Thank you.
मैं बोल सकता क्यों नहीं बता बोलो बोलो क्यों नहीं सीखो तो क्यों नहीं बोलता हिंदी जानता है बंगला जानता है अंग्रेजी जानता है सभी तो जानता है बोलो तो देखें जरा चेष्टा तो करें
सच में मैं नहीं जानता
संक्षेप में ही बोलो
ये कीर्तन भी लालसामयी कीर्तन ये भी श्री भक्तिनाथ ठाकुर का लिखा हुआ है चिंतामणि मय राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत राधा कुंड कैसे हैं इनका कुछ दिग्दर्शन करा रहे हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर हम जैसे जड़ चक्षु से देखते हैं कि ये कंक्रीट का बंधा हुआ है ऐसे नहीं ऐसे चिंतामणि हमारे आदि गुरु ब्रह्मा जी भी बताया चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष ये वृंदावन धाम कैसे चिंतामणि में ये साधारण मिट्टी पत्थर नहीं है चिंतामणि में एक समय सनातन पाद के समय अकबर उनके पास आए थे कुछ सेवा करना चाहा मुगल सम्राट अकबर तुम क्या सेवा करोगे कर नहीं कुछ सेवा करना चाहता हूँ तो देखो सनातन पाद जो मदन मोहन मंदिर है वृंदावन में उधर एक सीढ़ी से उतर करके जमुना जी में आते थे देखो ये कौन टूटा हुआ इसका तुम मेरा मत कर रिपेयर कर देना अकबर सम्राट ओहो मैं समग्र भारत का सम्राट हूँ ये सेवा तो मेरे लिए एक निंदाजनक बात है कुछ बड़ी सेवा बताते मन मन सोच रहे हैं जाओ देखो देखिए से कर देना नीचे उतर के आए सनातन गोस्वामी कैसे हैं करुणया विद्रवन देह करुणा में उनका हृदय पिघल गया उनको वृंदावन धाम का एक झांकी दर्शन करा दिया जब देखा थोड़ा टूटा हुआ इतना सुंदर इतना कीमती मनी है अकबर ने देखा मैं सारा भारत भी बेच दूं इस मनी का मैं बराबरी नहीं कर सकता हूं उनका आंख खुला
करोड़ों करोड़ों मणियों उसमें लगी हुई एक एक मणि का भी मूल्य नहीं दे
एक एक मणि का भी मूल्य अब सारा भारत को बेच करके भी नहीं दे सकते तो उनका अभिमान चूर्ण हो गया गाथा कुंड तक कैसे है चिंता मणिमय और चारू ओर क्या है ताहे कुंज सत सत चारू ओर कुंज ही कुंज है अष्ट सखियों का कुंज समस्त सखी एक एक कुंज है जैसे ललिता देवी का कुंज ललितानंद कुंज रूप मंजर जर्द कुंज अनंग मंजर कुंज ऐसे एक एक कुंज का नाम भी है सबका वो कैसे हैं प्रबाल विद्युन्मय तरुलता मुक्ता फले अवनत उधर जो तरु मतलब पेड़ है लताएं हैं कैसे हैं प्रबाल विद्युन उसमें मुंगा मोती सब इसमें खिलता है क्यों जुगल किशोर की सेवा के लिए
फल उसमें होते हैं फल से मणि मुक्तियां इत्यादि निकलती है
मुक्ता फल अवनत जो लता से मुक्ता फल लगा हुआ है सखिया आकर के मुक्ता फल चयन करके जुगल किशोर की श्रृंगार करती हैं सानंद सुखद कुंज मनोहर कहाते कुटीर शोभे अरे कुंज का नाम सानंद सुखद कुंज वो कौन सा है राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में जो संगम स्थली है उसमें एक कुंज है जहाँ कृष्ण जी अधिक सुख अनुभव करते हैं सानंद स आनंद स अर्थात कौन राधा कृष्ण के स कहने पर सबसे कौन है अधिक श्रीमती राधा ठाकुरानी राधा ठाकुर उनको अधिक आनंद प्रदान करती हैं असल में कुंज किसका है अनंग मंजरी का कुंज इसलिए उनका नाम अनंग मंजर कुंज या सानंद सुखद कुंज उस सफल कुंज इतना है मनोहर आसानी से किसी कृष्ण का मन हरण कर सकते हैं तहाते कुटीर शोभे उस कुंज के अंदर एक कुटीर है भक्तिम ठाकुर कमल मंजर के भाव में कह रहे हैं बसिया तो था गाव कृष्ण नाम कवे कृष्णदास लोभे मैं वही सानंद सुखद कुंज में कुटीर के अंदर बैठ करके कृष्ण नाम गान करूंगी क्यों कृष्ण के दास लाभ के आशा से कृष्ण पर ठाकुरानी की पाल्लदासी भाव कवि प्राप्त होगा ऐसे में कीर्तन करूंगी बैठ करके ऐसे में कीर्तन कर रही हूँ, क्या हुआ? एमन समय मुरली गान पसीबे दासी काने, पर ये दासी ये सनंद सुध कुंज की कुटी में बैठ करके कीर्तन कर रही है, अचानक कृष्ण का मुरली का शब्द सुनाई पड़ा। ये सब मुरली का शब्द हुआ, सुनते ही क्या हुआ? आनंदे माती व सकल भूली वो श्री कृष्ण बंशी गाने। सुनते ही क्या होता है, बोला आनंद में मतवाड़ा हो जाता हूँ, हो जाती हूँ, क्या करना है नहीं करना है भूल जाती हूँ, अपने खो बैठती हूँ, सब भूल जाती हूँ। क्यों? श्री कृष्ण वंशी गाने, कृष्ण के वंशी में ऐसे एक आकर्षक माधुरी है तो सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं। कृष्ण के जो 64 गुण शिल रूप गोस्वामी पर दिखाया, उनमें एक गुण का नाम नारी गण मनोकर्षी, नारियों के मन की आसानी से कृष्ण आकर्षण कर सकते हैं मुरली के माध्यम से। कृष्ण वंशी वादन करते हैं, लेकिन ब्रज में और सब रहने पर भी गोपियां जिस प्रकार श्रवण करती हैं और ऐसे कोई सुन नहीं सकते हैं। जसोदा में भी सुनती है, जसोदा माँ सोचती है कृष्ण मुझे मक्खन मांग रहे हैं, और सखा सुनते हैं कि मुझे गोचरण में जाना है, और गोपियां सुनती हैं कि कृष्ण मुझे राधे राधे करके बुला रहे हैं। राधे राधे बोली मुरली डाकी वे मोदी ईश्वरी नाम। बंशी क्या ध्वनि, क्यों आनंद मातवरा हो गई कमल मंजरी, बंशी क्या पुकार रही है? राधे 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 और दूसरा नहीं। ये सुन करके ये कौन है? मोदी ईश्वरी नाम, क्योंकि ये मेरा ईश्वरी की स्वामिनी का नाम पुकार रहे हैं बंशी, इसलिए आनंद में मतवारा हो गई कमल मंजरी। ये जो रूपानुग साधक हैं, जो सिद्धि लाला से कीर्तन करेंगे या करते हैं, उसमें कृष्ण के साथ कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो दास गोस्वामी बताया कैसे हमारा संबंध होना चाहिए। देखा मदीश्वर नाथत्ति ब्रज विपिन चंद्रम ब्रज वनेश्वरीम तन्नाथत्ति तद अतुल सतीत्यु ललिताम विशाखांशी छलि वितरण गुरु ते प्रिय सरो वृंद्र उत्पेक्षा ललित रे स्मर मन। मदीश्वर नाथत्ति ब्रज वनेश्वरीम, मेरा कौन है? श्रीमती राधिका मेरी स्वामिनी है, मेरी ईश्वरी है। कृष्ण के साथ हमारा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। वो कौन है? मेरी स्वामिनी या मेरी ईश्वरी का वो नाथ है, दुर्गत संबंध है। निकटगत संबंध किसके साथ है? राधिका जी के साथ। ये वंशी राधा राधा पुकारने के कारण कमल मंजिल मतबारा हो गई, सब भूल गई। सुनिया चमकी उठी वे दासी कमन करी वे प्राण। ये सुनते ही ये दासी अर्थात कमल मंजिल चमक अर्थात वो आश्चर्यचकित हो गई। अहो कहां से वंशी ध्वनि आ रही है और मेरा ईश्वरी के नाम पुकार रही है। उनका मन उतल पुतल हो रहा है, मैं कैसे जाऊं, कब जाऊं, जा करके मेरी स्वामिनी की सेवा करूं। इसलिए उनका प्राण उतल पुतल हो गया। ये भक्तिदान ठाकुर ये साधक के लिए लाल समय प्रार्थना ये लिख करके दिया कि हम भी ऐसे उस भाव को प्राप्ति करने के लिए गुरुपाद बंध में अनुभव तक रहकर ऐसे प्रार्थना करूं।
तुम कीर्तन करो तो आ जाओ, इधर आओ। नहीं नहीं सब नहीं, यही लड़की है, इसको सिखलाया है ना, आ जाओ। हारमोनियम बजा करके करती है या ऐसे ही? हाँ तो ये बजा ले। तो हाथ में क्या रखा? लो देख करके करो। वो भी गाती है, इधर आ जाओ, उसके साथ में करो। कितना बजा है?
7:05।
बहुत जल्दी हो गया। ठीक हाँ हाँ वैसे ही ये तो थोड़े दो चार आदमी हैं, इसको हटा लीजिए।
से ही मोरा संपदा Thank you.
प्रयास है। चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण हैं, वो यदि नहीं आते तो राधा कृष्ण को कोई नहीं जानता, उनकी भक्ति को नहीं जानता, वृंदावन की महिमा को नहीं जानता, राधा जी को नहीं जानता, राधा जी के भावों को कोई नहीं जानता। उन्होंने सारी शक्ति और कृपा शक्ति रूप गोस्वामी में भक्ति और आलिंगन कर दिया, बोले ये हमारी जितनी शक्ति है सब तुम में आ गई और हम जिस काम के लिए है उसको प्रचार करो। उन्होंने भक्ति रसामृत भक्ति रस का सिंधु महासागर जिसकी लंबाई चौड़ाई
गहराई
नहीं है और गहराई कहीं कोई था नहीं पा सकता, ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु और उसमें से मंथन करके उज्ज्वल नीलमणि जैसा रत्न उसमें से प्रस्तुत किया और जगत के लोगों को एक बिंदु दिया। रूप गोस्वामी नहीं आते तो ये सब चीजें नहीं हैं। बहुत से ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया और महाप्रभु के भावों को, राधा कृष्ण के भावों को, गोपियों के भावों को सब समझा। स्वरूपता हम इस जगत के नहीं हैं, जिसको हम लोग समझ रहे हैं कि मैं और मेरा, ये तो हार्ड मांस पेशाब पैखाना टट्टी रक्त की थैली है, थोड़े से कुछ दिनों में खराब हो जाने वाली है, सड़ गल जाने वाली है। एक मिनट में यदि आत्मा निकल जाए तो इसकी कोई अस्तित्व नहीं रह जाए, उसी समय घर से बाहर करना होगा। इसके अंदर में जो आत्मा बोलने वाली है, समझने वाली है, अनुभव करने वाली है और उसको जो अनुभव कराने वाला है वो तो है परम पिता परमेश्वर, वो श्री कृष्ण राधिका जी और हम जीवात्माएं अपने कर्मों से अभी स्त्री के रूप में पुरुष के रूप में आए हैं और अपने अपने भोगों से सुखों से संतुष्ट नहीं है। विशेष करके बचपन जाता है, युवा अवस्था आती है, कितने प्रकार के उमंग आते हैं और विवाह होने पर वो धीरे धीरे उमंग दुख के रूप में बदलता जाता है, बुढ़ापा आती है और इसके बाद में लपट लेकर के भी चल नहीं सकते और अंत में राम नाम सत्य हो जाता है, जगत का कोई भी एक तिनका भी साथ नहीं है। ये भगवान की व्यवस्था है, क्यों कष्ट देते हैं ये, तो भी भगवान का स्मरण करो। मनुष्य जग का ये चूल्हा पा करके स्त्री पुरुष का यदि भगवान का भजन नहीं किया, बहुत जल्दी बुढ़ापा आएगी, दांत टूटेंगे, सौंदर्य चल जाएगा खत्म और अंत में शरीर को भी छोड़ देना पड़ेगा, घर बारी स्त्री पुरुष पति जो कुछ वह साम्राज्य सब यहीं पर भरा रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। मरने के समय में विवश हो जाएंगे, कोई अकल काम नहीं करेगी, आपके सब परिवार वाले बैठे रहेंगे असहाय होकर के, पानी नहीं पी सकेंगे, दम नहीं ले सकेंगे। इसलिए रूप गोस्वामी ने भजन के तरीके बतलाए, गुरु अवश्य सदगुरु करो और उसके चरणों में सीखो, उसकी सेवा करो। गुरु भी सदगुरु होना चाहिए, जो शिष्य का माल फाड़ते नहीं उनका हृदय निर्मल करो, उनका हृदय कृष्ण के चरणों में पहुंचाओ, ऐसा गुरु। केवल चौथ लेने वाला नहीं, चौथ समझते हैं ना वर्ष में आए कुछ ले गए बांध भूल कर, नहीं कुछ दे दे जो उसका हृदय निर्मल हो जाए, उसकी सारी आकांक्षाएं मीठ भजन में रुचि। इसलिए रूप गोस्वामी के हम लोग ऋणी हैं, सभी जो उनका ये सब चीजें समझेगा, उनके भावनाओं को जरूर उनका ऋणी हो जाएगा। इसलिए रूप गोस्वामी या रूप मंजरी हमारे प्राण है, हमारे जीवन के जीवन है, हमारे अंधे के लकड़ी हैं, प्राणों के भी प्राण हैं। इसलिए उनके प्रति ऐसी ममता है। यदि ये नरोत्तम कहते हैं, नरोत्तम ठाकुर, उनका जो मिलन नहीं हमसे हो रहा है, ये क्या है? विरह सांप है, डस रहा है। जैसे 1 करोड़ सांप एक साथ डसे, तो जो पीड़ा होती है रूप गोस्वामी के विरह में, उनको वही पीड़ा हो रही। हम लोगों को भी पीड़ा कहाँ है उनके लिए? पीड़ा है, हो सकती है माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, स्त्री के लिए। आजकल स्त्री और पति का आप संबंध तो देख ही रहे हैं ना, पेपर में आता है कि स्त्री ने पति को 20 दे दिया, बेटा ने पिता को 20 दे दिया, मर गया। हड़पने के लिए पति ने स्त्री को भी मरवा दिया, दूसरे स्त्री से प्रेम है और ये बाधा देती है, बस उसको मरवाई दो। ऐसे ऐसे सब चीज हो, कोई सुखी नहीं है संसार में, चाहे वो राष्ट्रपति हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, भारत के हो, या प्रधानमंत्री हो, या बिड़ला टाटा हो, कोई सुखी नहीं। इसलिए प्यारे बंधुओं, बेटियों, भगवान का भजन करो, रूप गोस्वामी के भावों को समझो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अन्यथा बिल बिलाते हुए आए हो, बिल बिलाते हुए नंगे आए थे ना, हाथ पसार कर, और जाएगा क्या?
मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसार से जाएगा।
मुट्ठी बांध करके आए और जाएगा कैसे? इसलिए अभी से भगवान का कुछ भजन करो, मांस मदिरा, प्याज लहसुन, अंडे गोश्त सब छोड़ो, तंबाकू तंबाकू का मसाला भी मत लो। एकांतिक रूप में सदगुरु आश्रय करके, उनके आश्रय में रह करके, अनुगत्य में रह करके कुछ कुछ भजन करो। जीविका निर्वाह के लिए जो कर रहे हो करो, और वो भी बेईमानी वाला बिजनेस मत करो। अमेरिका में गया एक बार, तो दिल्ली के रहने वाले लोग, उनकी पत्नी को, अपने तो बहुत बड़ा काम करते हैं, इंजीनियर हैं, और स्त्री को लगा दिया गो मांस बेचने के लिए। ये क्या तुमने पैसे के लिए गो मांस बेचना आरंभ किया? तुम्हारा वंश ध्वंस हो जाएगा, कहीं कहीं नहीं रहोगे, आज ही छोड़ो, बस उसी समय में छोड़ो, क्योंकि दूसरा काम करो नहीं, खाने के बिना मरो कोई बात नहीं, भगवान ने मुक्त दिया है, वो जरूर मिलेगा, छोड़कर के आप बहुत सुखी हैं। ऐसे ही भक्ति का अनुकूल जो चीजें नहीं है उसे मत खाओ पियो, और ऐसा कारोबार मत करो जो भक्ति के अनुकूल ना हो। शराब बेचने का ठीका मत लो, ऐसे ऐसे जो गंदे काम है मत करो। किसी के प्रति ईर्ष्या न रहे, द्वेष न रहे, और भगवान का जीवन सफल होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए रूप गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करना, उनकी एक धूली एक कण कण भी चरणों के मिल जाए, हमारा जीवन साफ हो जाए। नरोत्तम ठाकुर अनुभूति के साथ एक महामंत्र करो, महामंत्र
आप कीर्तन करो, खाली महामंत्र करो,
महामंत्र कीर्तन कर बे और तुम एक तो शेष कीर्तन कर जा।
निजन कुठीरे सिराधा चरण, निजन कुठीरे सिराधा चरण, स्मरणे थाकिब रात, स्मरणे थाकिब रात, शिरपो मंजरी दिने दिने
Yeah.
গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা গিরিধারী শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মহন শ্রী রাধা বিনোদ বিহারী।